بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بهجي وعلى آله. تربیت اولاد کے عملی اصول کے سلسلے کا درس نمبر 4. پچھلی بار گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عورت جو اب تک ایک عام عورت تھی، اس بچے کے بطن میں آتے ہی اب وہ ایک باعظمت ماں اسی طرح سے بن گئی ہے کہ جس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کرنے والا، اب یہ اتنی ہی باعظمت بن گئی ہے کہ جس طرح سے ایک عورت جو کہ پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کرتی ہے وہ ایک باعظمت ماں بن جاتی ہے. اب اس عورت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے قدموں تلے اب جنت آ چکی ہے، اب چاہے تو یہ اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو جنت میں لے جائے، خواہ اسے بے تربیت چھوڑ کر اس کو جہنم میں بنا دے. اس ماں کا اتنا زیادہ مقام بن گیا ہے کہ تمام انسان، تمام اولیاء، تمام حکماء، تمام انبیاء سب اس کو ماں کہتے ہیں اور اسی کی گود میں پلتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پوری دنیا کی جو انتہا ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر کی جو انتہا ہے وہ ماں ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی مقام آتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں قرار پاتی ہے. یعنی اولاد تو ایک طرف رہی، وہ کبھی ماں کی طرح سے اپنے باپ کے لیے شفیق و مہربان ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو شکم میں آنے والا بچہ ہے یہ خدا کی طرف سے والدین کے لیے اور خاص طور پر اس ماں کے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے. اب جتنے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ سمجھیں ایگزامینیشن پیپرز بڑھتے چلے جائیں گے. جتنے بھی بچے ہوں گے اب یہ سمجھیے کہ یہ ایگزامینیشن پیپر ہے اور سب سارے امتحانات میں پاس ہونا ہے. صرف ان کو پیدا کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ نہیں دینا، تربیتی امور کی تمام تر ذمہ داری انہی والدین کے کندھوں کے اوپر رہتی. اب یہ جو اس کی شکم میں جو آیا ہے ننا سا خلیہ یا کوئی سیل یا کوئی جرثومہ، یہ فقط ایک جرثومہ یا ایک سیل یا جو فیٹس ہے، یہ جو ابتدا ہے اس کی، یہ ایک مکمل شخصیت کا نقطہ آغاز ہے. اب اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ گیا. دیکھیے، عورتوں کا عام طور پر، آپ لوگ تو خیر واقف ہو گئی ہیں، لیکن عام عورتوں کو گھریلو کام کاج کی خاص معرفت نہیں کہ کتنا عظیم ثواب ملتا ہے. اب حاملہ کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ کی 80 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. اب یہ جو عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر بوند جو وہ پلاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. شوہر پریشان حال، تھکا واندہ گھر آتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتی ہے، نصف جہاد کا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے. اور اگر یہ عورت بچے کے رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے تو اسے 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے. اور یہ ذکر خدا کرتے ہوئے اگر گھر میں جھاڑو دے، آج کل تو یہ تصور نہیں ہے، عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گندا قسم کا کام ہے، लेकिन इसको जब भी ऐसी जरा खराब सी, हमने उसमें तस्वीर भी आपको दिखाई है कि घर घरेलू कामकाज जाहिर है कि वो सोलह श्रृंगार करके तैयार होके तो नहीं किए जा सकते। अगर जिक्र खुदा करते हुए घर में झाड़ू भी दे, खाने काबा के अंदर झाड़ू देने का सवाब उसको दिया जाता है। अब अगर ये औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और उसे सारी रात आराम देने की कोशिश करती रहे, तो इसके तमाम गुनाह सुबह तक माफ हो जाते हैं और 12 साल की कबूल शुदा इबादत का सवाब इसको दिया जाता है। और बच्चे की जब इसकी पैदाइश हो जाती है तो 70 साल के नमाज और रोजे का सवाब फकत उस दिन इसको हासिल होता है जिस दिन इसने बच्चे को जन्म दिया होता। और वजह हमल में हर दर्द जो ये बर्दाश्त करती है, हर एक दर्द के एवज इसको एक मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। और बच्चा अगर रात को रोता रहे और मां रिवायत में कि इसको बगैर बुरा भला कहे दूध पिलाए, तो एक साल की नमाज और रोजे का सवाब इसको अदा किया जाता है। और जब बच्चे की दूध छुड़ाई की मुद्दत आती है तकरीबन 2 साल बाद, तो एक फरिश्ता खुदा की तरफ से इसको खुशखबरी सुनाता है कि औरत, अल्लाह की तरफ से आज तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। और अगर ये इस हालत में मर जाए कि इसका शौहर इससे राजी हो, तब भी इस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। और जो जितने भी सवाब इसके बताए गए हैं कि घर की चीजों को अगर ये करीने से रखे तो खुदा इसके ऊपर अपनी नजर रहमत डालता है। और आपको पता है कि जो खुदा का मंजूर नजर हो जाए और तो फिर वो तमाम उसको अजाबों से परवरदिगार के निजात मिल जाती। और अगर ये 7ों दिन घर में काम करे, औरतें आमतौर पर शिकायत करती है ना कि हमारे तो किसी दिन छुट्टी नहीं होती, 7 के 7 दिन हमें काम करना पड़ता है। रिवायत में है कि अगर ये 7ों दिन घर के अंदर काम करे तो जहन्नुम के 7ों दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के 8ों दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। और पानी का एक घूंट अगर एक शौहर को ये पिला दे तो 1 साल की मुस्तहब इबादत का सवाब, जिसमें दिन में रोजे रखे जाएं और रातों को इबादत में बसर किया जाए, इस औरत को अता किया जाता। और शौहर के लिए अगर एक मसल खाना तैयार करती है तो जन्नत में खुदा इसके लिए लजीज किस्म के खाने तैयार करेगा और कहेगा कि खूब खाओ पियो, ये उन जहमतों को बदला है जो तुमने दुनिया में उठाई थी, दुनियावी जिंदगी में बर्दाश्त की थी। देखिए औरतें अब कहती हैं हम ये काम क्यों करें, हम पर तो ये काम वाजिब नहीं है। देखिए तो कितना अजीम सवाब परवरदिगार आलम आपको अता करना चाह रहा। देखिए जो घर है ये आपकी किंगडम है, यहां पर आपकी हुक्मरानी चलती है, इसका इख्तदार आपके अपने हाथ में होता है, आप इस घर की मालिका हैं। लेकिन देखिए इस इख्तदार को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं। कहा जाता है ना कि ताज एक हसीन गुलाब की तरह से होता है, कि इसको हासिल करने के लिए कांटों में हाथ डालना पड़ता है। और घर की इस मालिका बनने से पहले, मलिका बनने से पहले, रानी बनने से पहले किसी हद तक बांदी बनना पड़ता है। तो देखिए ये कानून कुदरत है, वो जो शेर है ना किसी का, कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो जैसे कि हमने किताब के अंदर भी इसको नकल किया था कि सुरमे ने एक दफा शिकायत की कि भाई आप लोग मुझे इतना पीसते क्यों हैं, देखिए पीस पीस के सुरमा बनाया जाता। तो सुरमे से कहा गया कि ताकि तुम अशरफुल मखलूकात इंसान की आंखों में जगह पाने के काबिल हो जाओ, इस वजह से इतना पीसा जाता। तो ये हामिला इस कदर जो तकालीफ उठा रही है, ये अल्लाह की निगाह में अपना मुकाम बनाना चाहती है। तो आजकल ये वाले भी नारे लगने शुरू हो गए हैं, और खुद मदरसे का जो फेसबुक पे अकाउंट है उसमें मुख्तलिफ लोग, खवातीन भी सवालात पूछती हैं, अगर हम शादी ना करें, शादियों से बेजारी, कौन ये बखेड़े जो है पाले और हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और इस किस्म के ड्रामे भी आजकल बनाए जा रहे हैं। तो देखिए मेयार जो है ना वो आखरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी नहीं। आखरत की कामयाबी असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, यानी असलन देखा जाए तो अगर आपको जन्नत मिल जाती है, रज़ाए परवरदिगार आपको हासिल हो जाती है, तब कहा जाएगा कि आप कामयाब हैं। कामयाबियां या औरत की कामयाबी ये नहीं है कि वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से ऐसी डिग्रियां और डिप्लोमे हासिल करे जो अब खुद मर्दों के हक में भी बेकार हो चुके। यकीनन उसके खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन उसको कामयाबी समझा गया, जबकि कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी फकत आखरत की कामयाबी है। पैगंबर ये भी जुमला इरशाद फरमाते थे, खत्मी मर्तबत फरमाते थे कि औरतों याद रखो, तुम में से जो नेक औरतें हैं वो नेक मर्दों से पहले जन्नत में पहुंच जाएंगी। ये लेडीज फर्स्ट, ये जन्नत के अंदर भी रहेगा। और यानी अब देखा जाए तो कौन सी कामयाबी ऐसी है और तमगा है जो आप हासिल करना चाहती हैं, जन्नत में मर्दों से पहले तो पहुंच रही हैं, और यहां ये हाल है, घरेलू जिंदगियां इस किस्म की गुजर रही हैं, जिसमें कितने लतीफे भी बनाए गए हैं कि मसलन वो एक साहब, उनके होंठ बिल्कुल काले हो रहे थे, तो जब पूछा गया इसी क्या वजह थी, तो कहने लगे कि बीवी जो है लड़ाका बीवी अपने मैके गई हुई है, तो खुशी से मैंने ट्रेन के इंजन को जाकर चूम लिया। इसी तरीके से मसलन बहुत सारी चीजें कि बीवी मसलन शौहर से पूछती है कि ये बताइए कि आप मुझे ख्वाब में देखते हैं, शौहर ने कहा बेगम मैं रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। तो ये सब लतीफ़ इस वजह से बनाई गई, घरेलू जिंदगियां बहुत खराब हैं और एक कहीं से भी कोई खुशगवारियत का कोई तासुर नहीं होता, उसी की वजह से लतीफे भी बनाए जाते हैं। तो अब इसको देखना चाहिए कि अब इसके पैरों तले जन्नत आ गई है, अब ये आम औरतों की तरह से नहीं है, अब इसे कुछ और भी कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे। देखिए हामिला को जैसे इससे पहले गुफ्तगू में बताया था कि दिन में उसे रोजा रखने का सवाब मिलता है और रात में उसको इबादत करने का सवाब मिलता है, मुजाहिदा का सवाब उसको अता किया जाता है, और कहा जाता है कि जो नेक सीरत हामिला औरत हो है वो 70 औलिया से ज्यादा उसको बेहतर करार दिया गया है। अच्छा अब आ जाइए, देखिए हर हामिला के लिए हर माह के एतबार से करने वाले कुछ आमाल है, हर माह के एतबार से करने वाले, इसकी एक लिस्ट औरतों के पास होनी चाहिए, एक चार्ट की सूरत में होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला पहले माह करने वाले जो आमाल है, अच्छा देखिए इसमें अभी आगे चलकर उसकी तफसील आएगी, सबसे पहले हम पहले महीने से आगाज करते हैं। पहले महीने हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले 2 खजूरें सूरह कदर पढ़कर खाए। देखिए इन चीजों के अभी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, वरना खजूरों के भी सारे असरात जो है वो बयान किए जा सकते थे इस मौके पर, लेकिन वो आप खुद तलाश करें या रूहानी जो गजाओं के जो रूहानी असरात के मौजू पर जो लेक्चर था उससे भी इस्तेफादा करें, उसके अंदर ये चीजें बताई गई थी कि रोजाना तुलू आफ्ताब से पहले 2 खजूरें सूरह कदर पढ़कर खानी और फिर जो चाहे उसके बाद वो नाश्ता करे। अच्छा इस पहले महीने में जितने भी नंबर 2 जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन और जितने भी जुमे आए उसमें सूरह साफात पढ़कर अपने शिकम पर फूंक मारे। जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन और जितने भी जुमे आए इस महीने उसमें सूरह साफात पढ़े और अपने शिकम पर फूंक मारे, और जुमे के दिन नमाज फजर के बाद एक मुकम्मल अनार खाए। हर किस भी सास नंदों वगैरह को शेयर ना कराए, उसमें से मुकम्मल खुद खाना है। ये 3 आमाल खास तौर पर इस पहले महीने अंजाम देने, हमल के दूसरे माह करने वाले काम या आमाल। हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले 2 अंगूरों पर सूरह तौहीद पढ़कर खाए। इन सब के बड़े असरात हैं, बेहतरीन असरात हैं। हर रोज तुलू आफ्ताब के बाद 2 अंगूरों पर सूरह तौहीद पढ़कर खाए, फिर जो चाहे नाश्ता करे। उसके बाद उस माह जितने भी जुमेरात और जुमा आए उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें। ये दूसरे महीने के जितने भी जुमेरात और जुमे आए उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें, और हर जुमेरात और हर जुमे को 140 मरतबा दुरूद मा अज्जिल व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक सौ चालीस मरतबा हर जुमेरात को और हर जुमे को दुरूद इस तफसील के साथ पढ़ना। उसके बाद हमल का तीसरा महीना शुरू होगा। इस तीसरे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी, ये तीसरे माह करना है। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमे आए उसमें सूरह आले इमरान की तिलावत करना है, सूरह आले इमरान की तिलावत। अच्छा, और तीसरी चीज, हर जुमेरात और हर जुमे को इसमें भी 140 मरतबा दुरूद पढ़ना है व अज्जल फरजहुम के साथ, ये तीसरा अमल है। उसके बाद जब चौथा महीना शुरू होगा अमल का, इसमें सबसे पहला जो अमल है वो है कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। लेकिन चीजों की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है, खाने पीने की चीजों की बहुत अहमियत है और खाने पीने की चीजों के ऊपर उन सूरों को पढ़ने की बड़ी अहमियत है, उसमें खास तासीर हो जाती है पैदा। देखिए, ये जो भी जो आमाल अभी आपको बताए जा रहे हैं इनमें कुछ रिवायात से साबित हैं, कुछ उलमा के अकवाल से साबित हैं और कुछ अमलियात के जो माहिर उलमा हैं उन्होंने बाकायदा अपने ऑब्जर्वेशन से चीजें निकाली और उन सबको मिलाकर जो है आपको बताया जा रहा है। तो हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए और इस माह जितने भी जुमेरात और जुमा आए उनमें सूरह दहर की तिलावत करें, सूरह दहर की। और तमाम नमाजों में, यानी हमल के चौथे महीने जितनी भी नमाजें पढ़ें उनमें कम से कम हर रोज की एक एक नमाज में सूरह कद्र की तिलावत जरूर करें। और आमतौर पर तो ये आमतौर पर लोग राइज ही है और सूरह कद्र बहुत ज्यादा राइज है कि लोग इसको नमाजों में पढ़ते ही हैं, लेकिन एहतमाम करना है इसका। और जिस वक्त चार महीने गुजर जाएं उसके बाद शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। देखिए, चार महीने के बाद रूह पड़ जाती है और रूह पड़ते ही उसका आगाज आयतल कुर्सी से हो रहा है। शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। उसके बाद जब पांचवा महीना शुरू होगा तो उस पांचवें महीने के जो आमाल हैं उसमें भी ये कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अंडे पर सूरह अलहम्द पढ़कर खाए। यहां अब कहे बगैर बात ना रह जाए जाए कि अंडा खाना मकरूह नहीं है, बिल्कुल जायज है, हलाल है, मुबाह है, अंडा खाने में कोई कराहियत नहीं है। कुछ लोगों का जैसे कि कुछ बातें मशहूर हो गई। अच्छा, उसके बाद इस महीने में, पांचवें महीने में जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह फतह की तिलावत करनी है, सूरह फतह। और तमाम नमाजें जो भी इस महीने में अंजाम देंगी फिर रोज के हिसाब से रोजाना की एक नमाज में कम से कम सूरह नसर की तिलावत जरूर करनी, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, किसी न किसी एक नमाज में जरूर करनी। पांचवें महीने और उसके बाद शौहर और बीवी बआवाज बुलंद कुरान की तिलावत करें, यानी उसके बाद के जितने भी दिन गुजरेंगे वज़े हमल तक शौहर और बीवी दोनों। अब कहा जाता है कि जब पांचवा महीना शुरू होता है तो बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, अब बाबा से बुलंद तिलावत कुरान करनी। अब छठा महीना शुरू हो रहा है, छठे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अनार पर सूरह फतह पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह कद्र की तिलावत करें, सूरह वाकया की तिलावत करें, जितने भी जुमेरात और जुमाएं उनमें सूरह वाकया की तिलावत करें। और रात की किसी एक नमाज में सूरह वत्तीन की तिलावत जरूर करें, रात की किसी भी एक नमाज में मगरिब और इशा में से सूरह वत्तीन की तिलावत करें, अगरचे मकरूह है, अगर किसी को याद ना हो तो देखकर भी पढ़ सकती है। हमल का जब सातवां महीना शुरू हो तो रोजाना नाश्ते से पहले सूरह यासीन की तिलावत करें और फिर उसके बाद जो चाहे नाश्ता करें। और इस महीने में जितने भी जुमेरात आए उसमें सूरह यासीन और जितने जुमा आए उसमें सूरह मुल्क की तिलावत करें। जितने जुमेरात आए उनमें सूरह यासीन, जितने जुमा आए उनमें सूरह मुल्क की तिलावत करनी, और हर जुमेरात और जुमे को 140 मर्तबा दुरूद माए अज्जल फरजहुम इसको पढ़ना। ये सातवें महीने के आमाल है। उसके बाद जब आठवां महीना शुरू हो तो आठवें महीने के अंदर हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा खास तौर पर कुछ सूरह हैं जो जरा दस दस दफा पढ़ने। अच्छा, जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर बाज़ औक़ात, क्योंकि देखिए हफ्ते को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, और इतवार को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह वत्तीन पढ़नी है, पीर को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, मंगल को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह फुरकान पढ़नी है, बुध को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह दहर पढ़नी है, और हर जुमेरात को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़नी है, और हर जुमे को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा सूरह साफात पढ़नी है। तो देखा जाए तो कुछ सूरह ऐसे हैं जो जरा निस्बतन थोड़ी सी जहमत होगी, जरा बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरे दिन में करके इसको डिवाइड करके पढ़ सकें तो पढ़ लें, वरना बिल्कुल मुमकिन ना हो तो 3 दफा, वरना 1 दफा तो कम से कम जरूर पढ़ लेना चाहिए बड़े सूरों को। जो छोटे सूरे हैं वो तो 10 पढ़ने में इतना वो नहीं है, लेकिन अगर वाकयातन औरत बहुत इंटरेस्टेड है कि मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बेहतरीन इसके असरात मुरतब हो, नेक और साले हो, सारे फवायद उसको जो है हासिल हो, तो वो इस तरीकेकार को अगर पूरा कर ले तो बहुत ही ज्यादा फायदा उसको हासिल होगा। ये आठवें महीने करने के आमाल है। उसके बाद हमल का जब नवा महीना आए तो इसमें रोजाना तुलू आफ्ताब से पहले दूध और खजूर पर सूर्य दहर पढ़कर खाए, और फिर उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। दूध और खजूर पर सूर्य दहर, और इस माह जितने जुमेरात आए उसमें सूरह हज, और जितने जुमे आए उनमें सूरह फातिर की तिलावत करें, सूरह फातिर की। उसके बाद इसी महीने में हर नमाज जुहर और असर के दरमियान सूरह वल असर और सूरह वज़्ज़ारियात की तिलावत करें, जुहर और असर के दरमियान सूरह वल असर और सूरह वज़्ज़ारियात। ये नवे महीने करने के आमाल हैं। अच्छा, नवे महीने में उलमा की तरफ से ताकीद है कि आईना औरत कम देखे। आप पूछेंगे आईना कम क्यों देखे, तो मैं जाती तौर पे कहूंगा इस वजह से कि बच्चे पर अच्छा असर पड़े। तो बहरहाल, खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन बहरहाल ये कि आईना कम देखे, शायद इसका एक कनाया ये भी हो कि आप बच्चे की तरफ तवज्जोहात को मरकूज रखे, अपनी आराइश व बनाओ सिंघारी के अंदर फकत ना रहे, सारा वक्त पता चला इसके अंदर खाया जा रहा है, बच्चों को ज्यादा जरूरत है। अच्छा, शौहर इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए एक जानवर कुर्बान करवाए, और उसके गोश्त का एक हिस्सा ये हामिला भी खाए, इसको खिलाए लाकर। अब किसी भी तरीके से पकाकर खाए, किसी भी उनवान से गिजा के तौर पर इमाम जमाना की सलामती के लिए एक जानवर कुर्बान करवाने के बाद उसका कुछ गोश्त शौहर हामिला को खिलवाए। अच्छा, आखिरी 3 महीने में हामिला खजूर और बही जरूर खाए, ताकि वो जो पैगंबर की भी रिवायत थी कि खुश अखलाक होगा बच्चा और बुर्दबार होगा, मुस्तदरकुल वसाइल की जो एक रिवायत थी। खजूर और बही ये आखिरी 3 माह के अंदर अलल खसूस, वैसे तो पूरे दौरान हमल खाए लेकिन खास तौर पर आखिरी 3 महीने में। और अमूमी तौर पर हामिला अपनी गिजा में शहद की मुनासिब मकदार रखे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल मुनासिब मकदार, मसलन रोजाना 1 चमची या इस तरह से शहद खाए, और ये आखिरी महीने की बात नहीं हो रही, पूरे दौरान हमल इस सिलसिले को जारी रख सकती। और उलमा फरमाते हैं अगर नुकसान ना हो तो हफ्ते में 1 मरतबा सिरका जरूर खाए, अगर कोई नुकसान ना हो। यानी कोई ऐसी मना ना किया गया हो, कोई और ऐसी वजह ना हो, तो सिरका जो है वो जरूर खाए। और वही के मुताल्लिक जैसे था कि ये अकल और दानाई को बढ़ाने वाली चीज है, हमारे आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान की। और वही की खसूसियत ये भी है कि ये बीनाई को भी तेज करने वाली चीज है। अच्छा, जो भी गिजाएं हामिला खाए, कोशिश करे कि वो कम हजम हो, वॉल्यूम में जरा कम हो, लेकिन गिजाइत में ज्यादा हो। आमतौर पर ये होता है कि वो असल वो बहुत क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ले लेती है, जबकि उनकी गिजाइत इतनी नहीं होती। जैसे कि देखिए, दूध है, उसको अपनी गिजा में रखना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं कि अंबिया की गिजा है दूध। फिर कैल्शियम की जो कमी वगैरह हो रही होती है, कि नॉर्मल जो आपकी, देखिए क्यों कैल्शियम के आजकल सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। एक तो वैसे ही डाइट में हमारे तकरीबन दूध ना होने के बराबर हो गया है। रोजाना जो डाइटरी इनटेक उसकी, वो तकरीबन 10 गिलास दूध अगर पिया जाए तो उतना कैल्शियम आपके जिस्म में आता है जितनी जरूरत होती। तो जाहिर 10 गिलास आमतौर पर तो कोई पी नहीं सकता है, ना इसकी आदत रही है, तो फिर वो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कैल्शियम के, ताकि कमी वगैरह ना हो। और हर रोज 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमान इसमें उर्दू वाले तरीके से लिख दिया गया, लेकिन रोजाना 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर चंद दाने किशमिश के खाए। क्योंकि ये आपको पिछली मरतबा बात बताई गई थी कि किशमिश की खसूसियत ये है कि इंसान के बातिन को पाकीजा बनाती, ताकि ये पैदा होने वाला बच्चा ये पाकीजा फितरत का पैदा हो। अच्छा, खास तौर पर इस पूरे जमाने हमल में औरत को चाहिए कि वो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से, खसूसी इर्तिबात रखे, ताकि ये खुद भी और इसका बच्चा ये इमाम जमाना की सिपाही बन सके, इमाम जमाना की खिदमत गुजार बन सके, और इसको इमाम जमाना की तरफ खुद को मुतवज्जे रखने के लिए और इमाम जमाना को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कुछ आमाल है, जिसमें से एक है, सबसे पहला है दुआए अहद। दुआए अहद ये वैसे भी इसका एक एक जो कलेमा है इसका, उसको पढ़ने से या एक एक हर्फ को पढ़ने से हजार हजार नेकियां नामे अमाल में लिखी जाती हैं, और हजार गुना महब होते हैं फी हर्फ, या बहुत सी जगहों पे एक कलमा। तो इतनी ज्यादा ये दुआ अहद की जो है वो ताकीद है, तो इसमें अहद किया जा रहा है। और इमाम कुछ खास उसके बाकायदा आप तर्जुमे के साथ अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इसमें आपको इमाम जमाना से क्या अहद आप कर रहे हैं। उसके बाद इलाही अजुमल बलाओ व बरहल खफाओ वाली जो दुआ, ये वाली दुआ खास तौर पर, यानी जितनी भी ये दुआएं और ज्यारतें इमाम जमाना से मरबूत जो हैं, जो मुंसलिक हैं, ये पढ़ती जाएंगी, उतनी ही इमाम जमाना की तवज्जो भी उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, उसके और उसके बच्चे की तरफ। इसी तरीके से कोशिश करें कि हर नमाज के कुनूत में, अगर अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत वाली जो दुआ है, हर नमाज के कुनूत में वैसे ही इसको पढ़ा करें, तो इसका इर्तिबात इमाम जमाना से बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से दुआए नुदबा भी अगर पढ़ सके तो दुआए नुदबा पढ़े। और खास तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ दुरूस ऐसे हैं कि जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए, जिसमें इमाम जमाना से के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारियां बताई गई। एक तो फजाइल वगैरह होते हैं, वो तो हर शख्स के कुछ ना कुछ इल्म में भी होते हैं, लेकिन आपको करना क्या है जमाने हमल गुजरने के बाद इस बच्चे को इमाम जमाना के सिपाही बनाने के लिए, इसको क्या करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इसका इर्तिबात इमाम से बढ़ाएंगी, और जब ये इमाम के लिए चीज पढ़ेगी, इमाम को रोजाना सलाम करेगी, इमाम से रोजाना अहद करेगी, इमाम के लिए रोजाना नुदबा करेगी, रोएगी, अपनी जिम्मेदारियों का तयन करेगी, तो खुद ब खुद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की तवज्जो इसके और इसके बच्चे की तरफ होती चली जाएगी, और उसके बाद दोनों का सआदतमंद होना कोई मुश्किल की बात नहीं। उसके बाद दुनिया और आखिरत में इस बच्चे को कामयाब भी करवाना है। तो वो अमल जो कि पिछले जो तालिबात थी उनको हमने बताया था कि जो इमाम खुमैनी की कामयाबी वाला अमल था, शेख हसन अली नकूदी की इस पेहानी वाला, उसका मैं अभी मौका नहीं है, बस जल्दी से उसको पढ़ते हुए गुजर जाते हैं कि जो उन्होंने बताया था कि दुनिया आखरत की हर कामयाबी तुमको हासिल हो जाएगी अगर तुमने इमाम खुमैनी से, उनके उस्ताद ने फरमाया था, अगर तुमने ये काम किया और इमाम खुमैनी ने करना शुरू किया और अजीम कामयाबियां हासिल की। हर वाजिब नमाज के बाद आयतल कुर्सी वहुवल अलियुल अजीम तक पढ़नी है, हर नमाज के बाद तस्बीह हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़नी है, तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है और तीन मरतबा आखिर में तमाम अमाल को करने के बाद तीन दफा दुरूद पढ़ना है और तीन मरतबा सूरह तलाक की तीसरी आयत का आखिरी जुज और चौथी आयत सूरह तलाक की वमन यस्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा वाली ये पढ़नी। ये हर नमाज के बाद मामूल बना ले तो ये औरत और इसका बच्चा दुनिया और आखरत की हर कामयाबी इनको हासिल हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ आमाल ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक उलमा फरमाते हैं कि ये दौरान हमल जो 9-10 महीने का जो पूरा पीरियड है, आम तौर पर 9 महीने के अंदर ज्यादातर प्रेगनेंसीज नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, बल्कि 10वें महीने में होती, यानी इस लिहाज से अगर हम हफ्ते को कैलकुलेट करें कि इसमें कितने आएंगे वीक्स, तो तकरीबन 40 हफ्ते बनते हैं। तो कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो 40 का अदद जिसमें मुकम्मल होना चाहिए, खुद 40 के अदद के अंदर जो 40 है इसके अदद के अंदर इतनी बरकत है कि जिसका मौका नहीं। एक जमान एक वक्त पिछले दुरूस के अंदर कुछ टाइम ऐसा था जिसमें हमने 40 के अदद की जो खसूसियात थी वो भी बताई थी, जो आज तो मौका नहीं है उसका। तो 40 हफ्ते बनते हैं। अब ये पूरे ये जो जो आमाल बताए जा रहे हैं ये पूरे दौरान हमल 40-40 मरतबा हो जाए। अब चाहे पहले दिन से लेकर 40 दिन में औरत मुकम्मल कर ले या हर हफ्ते एक एक करके और 40 हफ्तों में मुकम्मल करे और उसके बाद आराम से बैठी रहे। एक आधा अमल ऐसे हैं कि जिसके अंदर यानी कंटिन्यूटी के साथ करना है, रोज करना है, वो भी आगे चलकर बयान होंगे, लेकिन ज्यादातर अमल ऐसे हैं जो पूरे दौरान हमल हो जाने चाहिए 40 दफा, चाहे बीच में हो जाए, दरमियान में हो जाए, बस इस हमल के दौरान होने चाहिए। उनमें सबसे पहला अमल है ज्यारत आशूरा, जो इस पूरे दौरान हमल 40 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। उलमा ने फरमाया जो 40 वाले खासतौर पर आदत वाली चीजें अब आ रही हैं और जो पहले भी हैं, अगर इनको वाकई कोई इनकी पासदारी कर ले तो बहुत कवी इम्कान है कि ये बच्चा इमाम जमाना की फौज के हरावल दस्ते में शामिल हो जाएगा। ज़ियारत आशूरा 40 दफा, अब चाहे तो हर हफ्ते एक एक करके 40 हफ्तों में पूरा कर ले। और ये जो ज़ियारत आशूरा ये 100 लान और 100 सलाम वाली, क्योंकि एक हफ्ते में समझे एक दफा पढ़नी है उसको, तो 100 लान और 100 सलाम के साथ। अच्छा देखिए, ये जो ज़ियारत है ज़ियारत आशूरा, ये हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अपने सहाबी अलकामा को तालीम की थी। बाकायदा कामिल ज़ियारात के अंदर इब्न कौलविया ने इसको नकल किया है बिहार की 101वीं जिल्द के अंदर भी। और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जो इस बच्चे को भी हासिल होंगे और इस हामिला को भी। आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी माशाल्लाह से हयात हैं, कौम के मराजे में से एक हैं। आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी फरमाते हैं कि एक आलिम थे सैयद मोहम्मद बिजनौरदी, उनके बेटे एक आंख से नाबीना हो गए। कह रहे हैं ईरान के अंदर भी बहुत इलाज करवाया उनका, ईरान से बाहर भी लेकर गए, बहुत इलाज करवाया, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, यहां तक कि दूसरी आंख भी उनकी बिल्कुल जाया हो गई। तो उनके एक आलिम रिश्तेदार ने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की। और फरमाया कि जो भी ज़ियारत आशूरा पर मुदावेमत करेगा, यानी हमेशा रोजाना इसको पढ़ता रहेगा, उसकी आंखें हमेशा सलामत रहेंगी। उस लड़के ने भी पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि उसकी जो हर तरफ से मायूस हो चुका था उसकी दोनों आंखों की बीनाई वापस लौट आई। तो इससे पता चला कि ज़ियारत आशूरा कम से कम ये जो बच्चा पैदा होगा इसकी आंखें बिल्कुल सही सलामत रहेंगी आंखों के लिहाज से, यानी उसका एक बड़ा जबरदस्त उसम का असर है जो कि बयान हुआ है। अच्छा, आयतुल्ला बहजत एक ज़ियारत आशूरा के लिए एक बात और कहते थे कि ये ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी की है, ये हदीस कुदसी, यह हदीस कुदसी की तरह है, बहुत मुजर्रब है ज्यारत आशूरा। और उरफा में से जो शेख रजब अली खयात गुजरे, वो फरमाते थे कि मैं मरते दम तक ज्यारत आशूरा को तर्क नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आलम माना या आलम रूहानियत से इस बात की वसीयत की गई है कि हमेशा ज्यारत आशूरा पढ़ते रहो। आलम रूहानियत से बाकायदा शेख रजब अली खयात को वसीयत की गई कि हमेशा ज्यारत आशूरा पढ़ना। और बाकायदा वो जो इमाम की मुलाकात में सैयद रश्ती का वाकया बहुत ज्यादा मशहूर है, उसमें इमाम जमाना अलैहि सलाम ने 3 दफा फरमाया था आशूरा आशूरा आशूरा, यानी ज्यारत आशूरा ज्यारत आशूरा ज्यारत आशूरा 3 मरतबा इमाम ने फरमाया था। ये जो अगर हामिला ज्यारत आशूरा पढ़ेगी इस दौरान हमल, इसकी बरकत से हामिला और उसका बच्चे की उम्र बहुत तवील हो जाएगी, बीमारियां इससे दूर होती हैं। और इराक में वो वबा वाली जो एक वाकया है वो तो बहुत ही ज्यादा ज्यारत आशूरा के हवाले से मशहूर है, जो शेख अब्दुल करीम हायरी जिन्होंने हौज़ा इल्मिया कुम की बुनियाद रखी थी उन्होंने इस वाकये को सुनाया। एक बहुत अरसे पहले मैंने वाकया इन्हीं से मंसूब करके सुनाया था, जबकि ये इसके रावी। शेख अब्दुल करीम हायरी फरमाते हैं कि हम जब वबा फैली हुई थी बहुत ज्यादा, और तो हम सब लोग आयतुल्ला फिशारकी के घर में जमा थे, आयतुल्ला फिशारकी, और सब बहुत परेशान थे कि एक एक घर से 5-5, 6-6 जनाजे रोजाना उठ रहे थे, इतने ज्यादा वहां पर वबा फैली हुई थी। तो कह रहे हैं उस वक्त आयतुल्ला मोहम्मद तकिये शिराजी, वो मर्जे तकलीफ थे, वो उस घर के अंदर आए और कहा कि मैं अगर एक हुक्म दूं तो तुम लोग मानोगे? सबने कहा हम मानेंगे। कहा कि अगर तुम सब लोग 40 दिनों तक ज्यारत आशूरा पढ़ो तो इस मुसीबत ये वाली मुसीबत दूर हो जाएगी, और इसका सवाब अगर तुम इमाम जमाने की वालदा नरजिस खातून को हदिया करो। अब मसाजिद के अंदर, घरों के अंदर, हर जगह ज्यारत आशूरा पढ़ना शुरू हुए, फौरन ही शिया घरानों से तमाम अमवात होना बंद हो गई। अच्छा, अतराफ में इधर उधर गैर शिया अफराद की भी अक्सरियत थी, वो देख रहे थे कि हमारे घरों से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं, शिया घरों से जनाजे बिल्कुल नहीं उठ रहे। आयतुल्ला तकी शिराजी के पास वो लोग आए, क्या क्या आप लोगों ने ऐसा अमल किया? उन्होंने ये अमल उनको भी बताया कि आप लोग भी इस अमल को करें। उन्होंने जब करना शुरू कर दिया तो पूरे इलाके से वो वबा खत्म हो गई। तो देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जियारत है, ये जियारत आशूरा, इसको फकत इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि बस इस तरह से कोई मफाद को हासिल करने के लिए बस हमने पढ़ा उसके बाद इसको छोड़ दिया, गुनाहों में फिस्क फुजूर के अंदर जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे, बस हमें तो एक वक्ती मफाद लेना था और वो मफाद पूरा हो जाए तो फिर हमें ज्यारत आशूरा या इमाम हुसैन से माजल्ला कोई इतना ज्यादा सरोकार नहीं अमली जिंदगी। जब भी बाकायदा इस किस्म के नारे और बैनर लोगों ने बनाए हैं कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है, इसके मायने ये है कि खुदा हाफिज इमाम हुसैन। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि भाई इमाम हुसैन को खुदा हाफिज हम कह रहे होते हैं, शोक बढ़ा रहे होते हैं, अब उसके बाद हर किस्म के गुनाह और गाने और मौसीकी और फिल्में जो है उस रात को चलना शुरू हो जाती हैं। तो गुनाह के मायने यही है कि आप इमाम हुसैन को खुदा हाफिज कह रहे हैं। तो ज्यारत आशूरा या कुछ अब इसको ये नहीं कि सिर्फ वक्ती फायदा लेना है, बल्कि नहीं, इसको अब मुसलसल गुनाहों से अपने आप को बचाना है ताकि उस वो बरकत जो ज्यारत आशूरा से हासिल हुई है वो मुसलसल चलती रहे। दूसरा अमल जो 40 जिसका में अदद पूरा हो जाना चाहिए वो ये है सूरह यासीन। 40 मरतबा पूरे दौरान हमल सूरह यासीन को 40 अनारों पर पढ़कर खाए, यानी फी हफ्ता समझे एक अनार के ऊपर सूरह यासीन पढ़े और उस पूरे अनार को खा जाए, यानी समझे कि एक हफ्ते में एक अनार खाना है उसको सूरह यासीन पढ़ने के बाद, क्योंकि इतना ज्यादा देखिए इसका सवाब और फायदा भी कि पैगंबर फरमाते हैं एक मरतबा भी जो सूरह यासीन पढ़ लेता है तो उसे 10 बार खत्म कुरान का सवाब दिया जाता है। बहुत सी जगहों में 12 मरतबा खत्म कुरान का तस्करा भी, एक दफा सूरह यासीन पढ़ेगी 12 खत्म कुरान का उसको सवाब अदा किया जाएगा। और हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, फरमाते हैं अगर पूरी जिंदगी में एक मरतबा भी सूरह यासीन तिलावत कर ली जाए तो उसका एक फायदा तो ये कि वो घर कभी भी बदबख्ती उसको देख नहीं देखे, बदकिस्मती उस घर में नहीं आएगी, वसवास की बीमारी से वो लोग महफूज हो जाएंगे और कभी कोई सख्त बीमारी उसको ना लगेगी। यानी अगर ये हामिला सूरह यासीन पढ़ती रहेगी तो किसी भी सख्त और बड़ी बीमारी से ये और इसका बच्चा महफूज हो जाएंगे। पैगंबर एक और ने एक और फायदा भी बताया है कि अगर कोई कमारा इस सूरह यासीन को इस नियत से पढ़ेगा तो वो शादीशुदा हो जाएगा। अब ये हामिला अगर इसको पढ़ रही है तो कम से कम इसका लड़का या लड़की जो भी पैदा होने वाले हैं वो कम से कम शादी का मसला वो दौरान हमल ही उनका तय कर देगी। इतनी ज्यादा इसकी बरकत होगी कि ये जो इसने अगर इस 40 मरतबा सूरह यासीन इस अंदाज से पढ़ी तो लड़का हो या लड़की जो पैदा होगा इसका शादी का मसला दौरान हमल ही तय पा जाएगा। और ये बच्चा नजर बद लगने से भी महफूज रहेगा। और एक और बहुत बड़ा फायदा सूरह यासीन का ये है कि पैगंबर इस्लाम की जियारत नसीब होने का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस सूरह को खासतौर पर हमल में पढ़ने की ताकीद इस वजह से भी बहुत ज्यादा है कि एक तो इस सूरह का जो एक और नाम है वो है सूरह दाफिया। सूरह दाफिया ये हर किस्म के मुसीबतों बलाओं परेशानियों को दफा करने वाला सूरह है, इसका नाम ही है दाफिया। और ये जो सूरह है ये हामिला की जो जिंदगी है और इसके बच्चे की जो जिंदगी है इसमें हर किस्म के शर और बुराई को बिल्कुल दूर कर देगी अगर इसने सूरह यासीन को 40 मरतबा इस पूरे हमल के अरसे में पढ़ लिया। इस सूरह का एक और नाम सूरह मुअम्ममा भी है। मुअम्ममा यानी अमूम से मुश्तक, यानी ये अपने पढ़ने वाले कारी के लिए दुनिया और आखरत की हर खैर को अपने अंदर जमा कर लेती है अमूमी तौर पर। सूरह यासीन की इतनी ज्यादा ताकीद इसी वजह से आई है और खासतौर पर जमाने हमल में पढ़ने की कि दुनिया और आखरत की हर खैर इस हामिला और इसके बच्चे के लिए जमा हो जाएगी अगर इसने 40 मरतबा इसको पढ़ लिया। इसी वजह से इसको कल्ब कुरान भी कहा जाता है, कुरान का दिल। अच्छा, कुरान का दिल सूरह यासीन है और जो सूरह यासीन का जो दिल है वो इसकी 59 नंबर वाली आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये इसको सूरह यासीन का दिल कहा जाता है। इसकी अलग एक तफसीर है, ये कभी आप तफासीर के अंदर पढ़ें और इसके अलग फजाइल हैं। तो सूरह यासीन जो कल्बे कुरान है इसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि ये हामिला और उसका बच्चा इसके जो जाहिरी कल्ब और इनका जो बातिनी कल्ब है ये बिल्कुल पाक और पाकीजा रहेगा, जाहिरी कल्ब भी और बातिनी कल्ब भी। और आयतुल्ला मरशी नजफी को बाकायदा इमाम जमाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद की थी। खुद इमाम ज़माना ने आयतुल्ला मरशी नजफी को नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद की थी। देखिए जितने भी कुरानी सूरह हैं हकीकतन हमारे सारे आइम्मा इसके बहुत ज्यादा आशिक से तिलावत कुरान के से घबराना नहीं चाहिए, उफ 40 सूरह यासीन कैसे पढ़ेंगे और 40 सूरह फुरकान कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत बड़े सूरह लग रहे हैं कि इतनी ज्यादा दफा पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे आइम्मा इस कदर आशिक थे तिलावत कुरान के कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो नोके नेजा पर तिलावत कुरान करने के बाद कुरान से अपने शगाफ अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का इजहार किया था, सिर्फ अपनी जाहिरी जिंदगी में नहीं बल्कि शहादत के बाद भी नोके नेजा पर बुलंद होकर। तो ये दो आमाल हुए जो 40-40 दफा पूरे दौरान हमल अंजाम पा जाने चाहिए। तीसरा अमल जो 40 मरतबा होना चाहिए वो है सूरह यूसुफ की तिलावत। लेकिन सूरह यूसुफ की तिलावत 40 सेबों पर यानी फी हफ्ता एक सेब पर सूरह यूसुफ पढ़े और उसके बाद उसको तनावुल करें। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा कि ये भी हो सकता है कि दो दो तीन तीन दिन का वक्फा दे के इसको आदत को जल्दी मुकम्मल कर ले, टाइम ज़्यादा हो और आराम से इसके लिए कोई मुश्किल ना हो तो ये इस तरह से भी मुकम्मल कर सकती है, वरना कम से कम ये एक हफ्ते के अंदर एक का तो एवरेज रखे। इसका एक फायदा ये होगा कि इसका जो भी पढ़ने वाला होता है रोजे कयामत वो हजरत यूसुफ की मानिन हसीन बना दिया जाएगा। अब ये इसको पढ़ने वाली जो हामिला है और इसका जो बच्चा है कि मैदान कयामत में इनका हुसन बेपनाह हो जाएगा, एक फायदा ये होगा। दूसरा फायदा जो इस दुनिया के अंदर भी होगा वो ये कि ये हामिला और उसका बच्चा हजरत यूसुफ की मानिंद गुनाहों से पाक दामन रहेंगे, एक फायदा ये है इसका। और खास तौर पर शौहर और बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा अगर बहुत ज्यादा होता हो और उसको रफा करना मकसूद हो तो ये दोनों शौहर और बीवी जाहिर रियलाइज तो करते हैं कि बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये दोनों अपने पास सूरह यूसुफ को लिखकर अपने जिस्म के साथ रखें सूरह यूसुफ को, तो इंशाल्लाह इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है वो दूर हो जाएगा। सूरह यूसुफ को लिखकर अपने साथ रखना, तो ये इस पूरे दौरान हमल 40 दफा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो 40 का अदद पूरा होना चाहिए वो है ज़ियारत जामे कबीर, ये 40 मरतबा हो जाने चाहिए, यानी वो एक हफ्ते में एक का हिसाब, और बड़ी वाली ज़ियारत जामे, ज़ियारत जामे कबीरा या कबीर। अच्छा देखिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तो बहुत सारी ज़ियारतें हैं, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। अब उलमा ने एक सवाल उठाया कि उन तमाम ज्यारतों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा इमाम को अपनी कौन सी ज्यारत है, खुद जो इमाम जमाना को सबसे ज्यादा पसंद है वो यही ज्यारत जामे कबीरा, वफाती में भी है और इमाम जमाना सबसे ज्यादा इस ज्यारत से खुश होते हैं। रोज भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 40 दिन तक पढ़े, रोजाना पढ़ते चले जाएं। और ज़ियारत जामे कबीरा की जो बाकायदा उलमा ने तो शरह और तफासीर के अंदर तफासीर भी लिखी। अच्छा, इस ज़ियारत को अगर कोई शख्स पढ़ता है तो गोया उसने तमाम मासूमीन की ज़ियारत पढ़ ली, तमाम मासूमीन की ज़ियारत का सवाब उसको मिलता है। शायद इस वजह से भी इमाम ज़माना सबसे ज्यादा इसी ज़ियारत से खुश होते हैं, क्योंकि इसमें सारे सिर्फ उनकी बात नहीं होती, सारे मासूमीन की ज़ियारत इस ज़ियारत के नतीजे में हो जाती है। अल्लामा मजलिसी ने बाकायदा एक सच्चे ख्वाब में इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की थी। जिसमें आठवें इमाम ने अल्लामा मजलिसी को ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ने की ताकीद की थी। ज़ियारत जामे कबीरा ये बाकायदा ये हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी ये ज़ियारत है, ज़ियारत जामिया। अच्छा, आठवें इमाम की ज़ियारत तो अल्लामा मजलिसी को ख्वाब में हुई थी, सच्चे ख्वाब में। अल्लामा मजलिसी कहते हैं मुकाशिफे में, मुकाशिफा कहते हैं गोया दरमियानी सी कैफियत होती है, गोया सो भी नहीं रहे होते जाग भी नहीं रहे होते, दरमियानी सी कैफियत होती है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि मैंने मुकाशिफे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुद इस ज़ियारत को पढ़ते हुए देखा था। अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इमाम ज़माना इस ज़ियारत को पढ़ने में मशगूल हैं, और इस ज़ियारत को जब इमाम ने ख़त्म किया तो इमाम ने एक जुमला फरमाया, क्या खूब ज़ियारत है। तो ज़ियारत जामे कबीरा और सारे मासूमीन की ज़ियारत का सवाब और सारे फवायद उसके इस हामिला और उसके बच्चे को अता कर दिए जाएंगे। अच्छा, फिर ये जो अब अगला अमल बता रहा हूँ ये भी वैसे तो 40 का अदद कम से कम मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन अगर ये रोज़ाना हो जाए नमाज शब, लेकिन पूरे जमाने हमल में 40 नमाज शब तो लाजमी इसको पढ़ना, वैसे तो कोशिश करें कि रोजाना ही ये पढ़े लेकिन कम से कम 40 दफा। देखिए, पैगंबर इस्लाम को मुकाम महमूद किस बिना पर अता हुआ था, कुरान की कायद भी है कि वमिनल लैल फतहज्जद बही नाफिलत लका असा अन यबअसा का रब्बो का मकामम महमूदा। इसके अंदर वजह बताई गई है कि पैगंबर को कि आप जो है नाफिला पढ़ें, रात को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ें, नमाज शब पढ़ें, शायद इस बिना पर परवरदिगार आपको मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। तो उलमा फरमाते हैं अगर ये रोजाना नमाज शब ये औरत अगर पढ़ने लगेगी तो उम्मीद है कि ये मां और बच्चा बड़े मुकामात के ऊपर फाइज हो जाएंगे। और देखिए एक बहुत बड़ा फायदा नमाज शब का ये भी है, इससे नफ्स जो है आपका पायमाल होता है। नफ्स आसान नहीं होता नफ्स को उठाकर इबादत की तरफ रागिब करना, सर्दियों की रातें हो रही हैं, इंसान थका हुआ लेटता है, नींद की लज्जत को छोड़ता है, तो उठकर नमाज से शब पढ़ने के मायने ये है कि अपने नफ्स को पायमाल कर रहा। अब ये औरत अगर कम से कम 40 दफा या पूरे जमाने हमल में नमाज शब की पाबंदी करती तो इसके मायने ये हैं कि ये इसका जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी अपने नफ्स के हाथों मغلوب नहीं होगा बल्कि हमेशा उस पर गालिब रहेगा। और देखिए अगरचे जाहिर मुश्किल तो होती है, इब्तदान मुश्किल होती है, रोजाना उठ रही है, नमाज शब पढ़ रही है, खुद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, मसलन उसी में उठ के नमाज शब पढ़ रही है, लेकिन वो उन तमाम मुश्किलात को भी याद करे कि मसलन याद करे कि अमीरुल मोमिनीन ने लैलतुल हरीर उस तक के अंदर अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सिफीन के उसमें लैलतुल हरीर के मुताल्लिक कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने 523 लोगों को तहतेस किया, 523 कितने ज्यादा मौला थके हुए थे लेकिन उस रात को भी नमाज शब को तर्क नहीं किया था। और उसके बाद भी अमीरुल मोमिनीन की जो पूरी जिंदगी थी किस तरीके से रात को उठकर अक्सर दफा जो है मस्जिद कूफा में जाकर नमाज शब के लिए जाया करते थे, दीवारों को पकड़ पकड़ के जाया करते थे, इसी रात की यानी सख्ती हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन आइम्मा की सीरत रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज्यारत आशूर ने बाकायदा शब आशूर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को वसीयत की थी। नमाज शब में दुआ करने में मुझे फरामोश ना करना। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दुरूद भेजिए ना मोहम्मद वाले, कैदो बंद की कितनी सौवतों में शाम गरीबा तक में नमाज शब को जो है अंजाम दिया। और इसी तरीके से हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी तमाम सख्तियों में ने भी कभी नमाज शब को तर्क नहीं किया, हत्ता कि उनकी जो खादिमा फिजा है उस तक ने कभी नमाज शब को तर्क नहीं किया था। सख्तियों में, परेशानियों में, हर सूरत में नमाज शब को अंजाम देते थे। तो देखिए इसका पढ़ने के नाम, इसको ना पढ़ने के मायने ये हैं। उलमा फरमाते हैं कि इससे तौफीकात सलब हो जाती हैं, बदबख्ती की अलामत है कि अगर कोई शख्स नमाज शब नहीं पढ़ता। और उलमा ये भी कहते हैं कि देखिए हर नेक अमल का सवाब मुकर्रर है सिवाय नमाज शब के। नमाज शब का सवाब मुकर्रर किया ही नहीं गया, ये बिल्कुल मख्फी है, परवरदिगार जितना चाहे देता चला जाता। तो नमाज शब को बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए। आयतुल्लाह बरोजर्दी बाकायदा फरमाते थे, आयतुल्लाह हुसैन बरोजर्दी आयतुल्लाह कोचानी के मुतालिक फरमाते थे कि इतने ज्यादा नमाज शब के पाबंद थे कि हर नमाज शब के कुनूत में दुआ अबू हमजे सुमाली पढ़ा करते थे। हर नमाज शब के कुनूत में पता नहीं शायद 2.5 पारे के बराबर दुआ अबू हमजे सुमाली, 40 मोमिनीन के लिए इसी तरह से दुआ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई 40 मोमिनीन के नाम तो हमें याद ही नहीं होते, चंद एक पिक तफा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये तरीकेकार भी किया जा सकता है कि आप कुनूत में एक फहरिस्त लेके अपने सामने रख लें, उसमें देख कर भी 40 मोमिनीन के नाम लेते रहें और उसमें अपने बच्चे का भी अगर नाम लिख ले तो उन दुआओं के अंदर, तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा और तरबियत की उम्र के एतबार से बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। अच्छा एक और फायदा यह होगा कि इस हामिला और इसका जो ये बच्चा है इनकी उम्रें बहुत तवील हो जाएंगी। नमाज शब की बहुत खसूसियत है कि उम्र को बढ़ाती है, जब भी हमारे सारे मराजे कराम और उलमा कराम की उम्रें काफी ज्यादा होती हैं और नेकियों की तौफीक हासिल होती है। अच्छा, ये बच्चा जो है, बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, ये खूबसूरत भी पैदा होंगे अगर दौरान हमल नमाज शब की पाबंदी कसने की, रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इनका वसी होगा। और कितनी ही सख्तियां क्यों ना हो, खुद इमाम खुमैनी की सीरत में मिलता है, कभी भी नमाज शब को तर्क नहीं करते थे, ख्वाह सफर में हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, नमाज शब जरूर पढ़ते थे। और खुद अभी कुछ ही अरसे पहले आयतुल्ला वहीद खुरासानी भी जब गए थे तो मस्जिद नबवी में भी 11 रकत नमाज, पूरी नमाज शब जो है वो वहां पर पढ़ी थी। तो हालांकि वो रियाजुल जन्ना वगैरह में इतना वक्त भी नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान से पढ़ी, 11 रकत ना पढ़ सके तो 3 रकत पढ़े, 3 रकत भी ना पढ़ सके तो कम से कम 1 रकत जरूर पढ़े, चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है और नमाज ईशा के फौरन बाद भी पढ़ी जा सकती है। सारे मसले मसाइल भी आपको इस सिलसिले में बताए जा चुके हैं। फिर एक और चीज जो 40 का अदद मुकम्मल होने के लिहाज से, वो है कि कम से कम इस पूरे अरसे में 40 मरतबा दुआए तवस्सुल जरूर पढ़े, यानी एक हफ्ते में एक मरतबा दुआए तवस्सुल रोज भी पढ़े तो क्या कहना। और इस पूर्व बिल्कुल यकीन हो उसको, देखिए आयमा मासूमीन से तवस्सुल ये एक ऐसी चीज है कि शेख अब्बास कुम्मी जो साहिब मफाती हैं ये फरमाते, बल्कि इनके मुतालिक मिलता है कि इनका बेटा एक मरतबा शदीद बीमार हो गया, बिल्कुल लाइलाज, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिए। अच्छा, थोड़े से उस लिहाज से मिजाज के एतबार से उन्होंने उसी वक्त एक कप मंगवाया या एक गिलास और उसके अंदर अपनी उंगलियों को घुमाया और कहा, अच्छा कहा कि इसको अब शिफा मिल जाएगी, इसे पिला दो। लोगों ने पूछा कि आपने कौन सी दुआ पढ़ी है, का कोई भी दुआ नहीं पढ़ी, इतने तवील अरसे तक मैंने इन उंगलियों से फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने लिखे हैं। इतना तवील अरसे तक फजाइल अहले बैत लिखने के बाद भी अगर इनके अंदर शिफा की कैफियत पैदा ना हो तो मैं इन उंगलियों को कटवा के फेंक दूंगा। तो आपने देखा कि बहरहाल तो एक वसीला छोड़ी, दुआए तवस्सुल के अंदर तो 14 वसीले जो है वो जमा हो जाते हैं। और एक और खसूसियत की बात यह है कि अगर ये 40 मरतबा दुआए तवस्सुल इस अंदाज से पढ़ती रहेगी तो ये हामिला और उसका बच्चा कुछ अजबनी के मुस्तजाबुद दावत हो जाए, इनकी हर दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि इस दौरान उसने 40 दफा दुआए तवस्सुल 14 मासूमीन से जो है वो पढ़ी। इसी तरीके से जिस जिसमें 40 का अदद मुकम्मल होना चाहिए वो 40 दुआए कुमैल, 40 मरतबा दुआए कुमैल, यानी एक हफ्ते में एक मरतबा का एवरेज बनेगा। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि हजरत खिजिर की दुआ है दुआए कुमैल, और मौला अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कुमैल इब्ने ज़ियाद को ये तालीम की थी, हर शबे जुमा इसको पढ़ा जाता है, हामिला और उसका बच्चा हर किस्म के दुश्मनों से इनकी हिफाजत होगी, रिस्क इनका बहुत ज्यादा वसी हो जाएगा, तमाम गुनाहों की मगफिरत रहेगी और ये हामिला और उसका बच्चा हमेशा तौबा की तरफ रागिब रहेंगे। दुआए कुमैल को दौरान हमल पढ़ने का फायदा, जब भी हज के मौके पर देखिए कि वहां पर जो ईरानी जायरीन, जो खास तौर पे बैनुल हरमैन जो जगह है, एक तो बैनुल हरमैन खुद करबला में है और एक बैनुल हरमैन यहां पर भी, एक तरफ पैगंबर इस्लाम और शहजादी वगैरह की कब्र है और दूसरी तरफ जो है 3 आइम्मा 4 आइम्मा और उस लिहाज से 4 कब्रें जो हैं जो बनी हुई, तो 6 मासूमीन तो समझें यहीं पर हैं। तो इस बैनुल हरमैन में बैठकर वो लोग इसको तमाम दुआओं में से दुआए कुमैल का इंतखाब किया गया है, तो वो वहां पर पढ़ी जाती है और हत्ता के मराजे तक आयतुल्ला दस्ते गैब दुआए कुमैल बाकायदा इनका प्रोग्राम हुआ करता था और इसकी बहुत सी शरहें जो हैं वो भी लिखी गई हैं दुआए कुमैल वगैरह की, तो उसको भी उस लिहाज से पढ़ना चाहिए कि इसके पैगाम क्या हैं, फकत अरबी के अंदर पढ़ते हुए ना जाए। खास तौर पर इस दुआ को अमीरुल मोमिनीन ने शबे 15 शाबान तालीम किया था कुमैल को और मस्जिद बसरा के अंदर ये दुआ तामील हुई थी, तालीम हुई थी मस्जिद बसरा में। और ये भी हैरत अंगेज बात है कि कुमैल ने फकत एक दफा सुनकर ही इस पूरी दुआए कुमैल को हिफ्ज कर लिया था। बच्चों को भी चाहिए कि जो है इनको दुआए कुमैल जुबानी जो है याद होनी चाहिए। तो बहरहाल दुआए कुमैल इस 40 अरस का जो अदद है ये इस दौरान हमल पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह से 40 मरतबा दुआए अहद 40 मरतबा, जिसमें वो वाली दुआ है जिसमें जानों पर हाथ मारा जाता है और बैत के अल्फाज जो है वो पढ़े जाते हैं। अच्छा, पिछले जितने भी आमाल बताए गए हैं उनमें तो सब में था कि हर हफ्ते का एक एवरेज बना लें, जल्दी भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए अहद के मुताल्लिक उलामा ये कहते हैं कि इसमें गैप ना दें, इसमें मुसलसल इसको पढ़ें, पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक मुसलसल पढ़ते हुए जाएं, इसमें गैप नहीं देना चाहिए दुआ अहद में। और इसमें गोया हामिला ये कहती है कि ये अहद मेरी तरफ से है, मेरे वालदैन की तरफ से है, मेरी औलाद की तरफ से है, मेरी नस्ल की तरफ से है, तो इसको खसूसियत इस दुआए अहद की बहुत ज्यादा इसको फायदे हासिल होंगे। और यही वजह है कि इमाम ज़माना भी ये बात बयान फरमाते हैं कि अगर हमारे शिया अपने अहदो पैमान की पासदारी करें तो हमारी तरफ से उनसे मुलाकात में हरगिज ताखिर ना हो, और हकीकी मारिफत के साथ बहुत जल्द हमारी मारिफत उनको और ज़ियारत उनको नसीब हो जाएगी बहुत जल्द। अच्छा, अब देखिए, जब इमाम की इसके नतीजे में दुआ के नतीजे में ज़ियारत नसीब होगी, तो हमने पिछली दफा भी कहा था कि हामिला अच्छे नेक अशख़ास के चेहरों की ज़ियारत करे, तो इस दौरान अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के रुख़े ज़ेबा की उसको ज़ियारत हो गई, तो इससे बेहतर क्या नतीजा और असर इसका होगा। दुआ अहद का जो बेहतरीन वक्त है उसके मुताल्लिक उलमा ये कहते हैं कि वो नमाज फजर के बाद है, उस वक्त उसको पढ़ा जाए। इसी तरह से जिसमें 40 का अदद पूरा होना चाहिए उसमें एक है ज़ियारत आले यासीन, ये भी 40 हफ्तों के अंदर इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। और ये ज़ियारत खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी में मोहम्मद हमीरी को इमाम ने तहरीर फरमाई थी, और इस ज़ियारत की बरकत से हामिला और उसके बच्चे को बहुत इम्कान है कि ज़ियारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नसीब होगी। अच्छा, आयतुल्ला बहजत ये बात फरमाते थे कि अगर दो में से किसी एक ज़ियारत का आपको इंतखाब करना पड़े कि ज़ियारत आशूरा पढ़ें या ज़ियारत आले यासीन पढ़ें, तो फरमाते थे कि ज़ियारत आले यासीन मुकद्दम है। वैसे तो उसकी अलग अहमियत है, इसकी अहमियत अलग है, लेकिन फरमाते थे कि अगर दोनों में से किसी एक अमर का इंतखाब करना पड़े तो ज़ियारत आले यासीन मुकद्दम है। और फरमाते थे कि आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी कहते थे कि रोजाना 1 घंटा कम से कम हर शख्स को चाहिए कि खिलवत में गुजारे, और उस खिलवत के उस टाइम को जिस तरह से भी चाहे याद खुदा में गुजारे, अलबत्ता उसके अंदर ज़ियारत आले यासीन जरूर होनी चाहिए। देखिए, इरफानियत और बड़े मुकामात को हासिल करने के लिए ज़ियारत आले यासीन, और सबसे ज्यादा तमाम ज़ियारतों में मुजर्रम है कि जिस ज़ियारत को पढ़ने के नतीजे में सबसे ज्यादा लोगों को ज़ियारत इमाम नसीब हुई है वो ज़ियारत आले यासीन है। सबसे ज्यादा इस ज़ियारत को पढ़ने के नतीजे में इमाम की ज़ियारत नसीब हुई है लोगों को। तो ये हुई एक बात, ये भी 40 का अदद इसका मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला जो अमल है वो है 40 बार हदीस किसा, 40 मरतबा का अदद पूरा हो जाना चाहिए। एक यानी एक एक हदीस किसा फी हफ्ते के एतबार से पढ़ ली जाए। आयतुल्ला शेख अब्दुल हुसैन खुरासानी फरमाते हैं कि तौफीकाते मानवी के खजाने दस्तियाब हो जाते हैं उस शख्स के लिए कि जो पाबंदी से हदीस किसा पढ़ता रहे। और अगर दौरान हमल, फरमाते हैं आयतुल्ला अब्दुल वहीद खुरासानी कि अगर दौरान हमल 3 महीने तक मुसलसल ये हदीस किसा इसने पढ़ ली मुसलसल यानी एक दिन के गैप के भी बगैर, वैसे तो ये है कि फी हफ्ता के एतबार से पढ़े, लेकिन फरमाते हैं एक फायदा हासिल करने के लिए, खास फायदा, कह रहे हैं अगर 3 माह में मुसलसल इसने इसको पढ़ा हदीस किसा को, तो बगैर किसी जहमत के और दिल से इसको नमाज शब पढ़ने की तौफीक हासिल हो जाएगी। आमतौर पर होता है ना नमाज शब के लिए कि बड़ा मुश्किल से पढ़ा जाता है, यानी बगैर हर किस्म की जहमत से आजाद हो जाएगी और इंतहाई शौक और रगबत के साथ ये नमाज शब पढ़ने की आदि बन जाएगी। बहुत बड़ा फायदा इसने बशर्त है इसने दौरान हमल कम से कम 3 महीने तक पाबंदी के साथ नमाज शब पढ़ी। और खुद इसके बच्चे पर फरमाते हैं बहुत अजीब और गरीब असरात नमूदार होते हैं, और तजर्बा किया है उन औरतों ने जिन्होंने खास तौर पर इस अमल को किया है, कि वो भी फरमाते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक अभी उसका बच्चा है जो पैदा होगा, ये हमेशा नमाज शब के अव्वल वक्त में बेदार होने वाला हो जाएगा, यानी नमाज शब का जो अफजल वक्त है, अफजल वक्त नमाज फजर से पहले वाला जो होता है, और ये नमाज शब के पाबंद हो जाएंगे। और खुद माओ ने इस बात का तजुर्बा किया है कि अफजलियत जो 3 महीने तक इसको पढ़ती रहती है, कहती है कि जिस वक्त नमाज शब का अव्वल वक्त आता है उस वक्त बच्चे की जो पेट में मूवमेंट और उसकी किकिंग है, जो पांव मारता है वो मां के शिकम पर, वो बहुत ज्यादा नमाज शब के अव्वल वक्त के अंदर बढ़ जाती, बहुत ज्यादा, और वो बच्चा बहुत ज्यादा इस बात का आदि बन जाएगा। उसके बाद जब ये बड़ा भी होगा तो नमाज शब के वक्त फजीलत के अंदर बेदार होने वाला हो जाएगा और उसे कभी नमाज शब कजा नहीं होगी। और यही वजह है कि आयतुल्ला बहजत भी फरमाते थे कि महाफिल हदीस किसा जो होती हैं यहां पर मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद हाजिर होते हैं। और महाफिल हदीस किसा में फरमाते थे कि खुद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम भी शिरकत करते हैं। और बाकायदा मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो पैगंबर से एक दफा पूछा था, कि परवरदिगारे आलम की तरफ से इस वाकये की क्या फजीलत है, हदीस किसा वाला जो वाकया है, फिर पैगंबर ने फरमाया था कि मुझे उस जात की कसम जिसने मुझको हक के साथ मबूस किया है, जिस मजलिस के अंदर भी इसे पढ़ा जाता है खुदा उस महफिल व मजलिस पर अपनी रहमत नाजिल करता है, रहमत के मलाइका उसमें शरीक होते हैं, और जितने भी शरीक महफिल होते हैं उनके लिए तलब मगफरत करते हैं, खुदा उनके तमाम गमों और परेशानियों को उनके गमों को दूर कर देता है। ये सुनकर मौला ने फरमाया था कि खुदा की कसम हम और हमारे शिया ही दुनिया और आखरत में कामयाब और सआदतमंद। और कसम खाकर पैगंबर के जुमले इरशाद फरमाने का मायने यही है कि खास तौर पर, यानी इसकी ताकीद मजीद है, तो लोगों को चाहिए कि अपने पास हर वक्त हदीस के साथ मोबाइल फोन में भी रखें, इधर उधर के हर जगह इसको पढ़ने में ताकि आसानी। अच्छा, आयतुल्ला गुलपायगानी हमेशा से बिल्कुल जवानी ही के दौर या बिल्कुल जिस वक्त दरस खारिज बहुत अव्वल से देते थे, हमेशा से हर मुश्किल के हल के लिए हदीस किस्सा की तिलावत की बहुत ज्यादा ताकीद करते थे। कहते थे हर मुश्किल के हल के लिए हदीस किस्सा पढ़ो, आयतुल्ला गुलपायगानी। और आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रजा बहाउद्दीनी जो अमलियात के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो फरमाते थे कि सद्दाम ने जिस वक्त ईरान इराक जंग हो रही थी तो मुख्तलिफ शहरों पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बमबारी शुरू कर दी थी, और इत्तला मिली थी कि मुख्तलिफ इलाकों पर सद्दाम जो है वो बमबारी कर रहा है और उसका कुम पर भी बमबारी करने का इरादा है। तो लोग परेशान होकर आ गए सैयद मोहम्मद रजा बहाउद्दीनी के पास आए, अमलियात क्या बहुत बड़े माहिर हैं, तवस्सुल करें मासूमीन से कोई हल निकालें इसका, कि कौम के ऊपर बमबारी अगर हुई तो मासूम कौम का रोजा भी यहां पर इसको भी नुकसान पहुंचेगा और सब अहले कौम को। तो फरमाते हैं आ गए रजा बहाउद्दीनी कि मैंने तमाम मासूमीन से तवस्सुल किया तो मुझे हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से ये पैगाम मिला कि अहले कौम حدیث قصہ سے توسل اختیار کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تمام مساجد میں اور گھروں میں لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی، اور اس کے فوراً بعد نہ صرف یہ کہ کوئی بمباری قوم کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ جو ایک پائلٹ وہاں پر جہاز بم گرانے کے لیے آ رہا تھا، اس نے اپنے آپ جو جہاز تھا اس کو زمین سے ٹکرا دیا، اور خود پیراشوٹ سے وہ پہلے نکل چکا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا بعد میں، اور اس کے بعد اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم تو بمباری کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے نیچے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو گھبراہٹ میں میں نے اپنے بم سب ادھر ادھر گرا دی۔ اور قوم جو ہے وہ مکمل طور پر بمباری سے محفوظ ہو گیا اس حدیث قصہ کی برکت سے۔ البتہ یہ جو حدیث قصہ ہے اس کو خاص آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آغا سید محمد رضا بہاؤدینی فرماتے تھے کہ اس کو مغربین کے بعد پڑھیں سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے آداب میں سے کہ اس کو نماز مغربین کے بعد پڑھا جائے، ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور کئی افراد جمع ہو کر اس کو پڑھیں۔ ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلی حاملہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک محفل سی گھر میں منعقد کر لیں، چند گھر کی عورتیں ہی جمع ہو جائیں، اور حدیث قصہ کو پڑھنے سے پہلے 41 مرتبہ درود پڑھیں، 41 دفعہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ممکن ہو تو حاضرین حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھنے کے بعد کھانا بھی کھلایا جائے، اور قبلہ رخ ہو کر حدیث قصہ کو پڑھا جائے، اور انتہائی مؤدب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ حدیث قصہ کو پڑھا جائے۔ اور آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑھی جائے اس موقع پر عود بھی جلانی چاہیے، خوشبو، خاص خوشبو ہے، اس کو جلایا جائے جس وقت بھی حدیث قصہ پڑھی جائے۔ اور بچوں کو صرف تلاوت قرآن نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یا قرآن کو حفظ کرانا نہیں، بلکہ حدیث قصہ کو بھی حفظ کروانا چاہیے۔ ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب جو ہیں ان کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہے، اکثر مسجد کے اندر جب بھی وہ یہاں پر پڑھتے تھے پہلے، تو وہ ہمیشہ حدیث قصہ کو زبانی پڑھتے تھے، تو بچوں کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہے کہ وہ بچے کہ جو کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جو ہکلاتے ہیں، اسٹیمر کرتے ہیں، ان کو حدیث قصہ بار بار اگر پڑھوائی جائے تو ان کی ہکلاہٹ کا مرض دور ہو جاتا ہے، حدیث قصہ کو بار بار پڑھوانے سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بابرکت جو ہے محفل اس کی ہوتی ہے کہ اس میں شریک جو افراد ہوتے ہیں ان کی عقل کے اندر بھی بہت زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقل میں برکت کے معنی میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر عقل شخص کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا، اور خاص طور پر اس محفل میں عرفا نے خاص خوشبو اٹھتی ہے اس محفل سے جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی، جس کی خوشبو کو عرفا نے محسوس کیا، حتیٰ کہ فرشتے آسمان سے اس خوشبو کو سونگنے کے لیے زمین پہ آتے ہیں حدیث قصہ کی، جو جب جس موقع پہ وہ پڑھی جاتی۔ بعض افراد اس کی آج کل سند کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ حدیث قصہ کی سند وغیرہ صحیح نہیں ہے، تو آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح اس سند ہے، بالکل حدیث قصہ کی سند بالکل صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو 40 کا عدد جس میں پورا ہو جانا چاہیے، وہ ہے 40 غسل جمعہ وہ انجام دے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ صرف جمعے کے دن انجام دیے جائیں گے، تو 40 جمعے اگر اس دوران آئے تو ایک بھی جمعہ سمجھیں اس کو چھوڑنا نہیں، اور غسل جمعہ ضرور کرنا، کوئی جمعہ اس میں مس نہیں ہونا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک اور بڑا فائدہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے، جسے آیت اللہ کومیلی خراسانی نے بیان فرمایا، جو کہ اصل میں احادیث کے اندر ہی آیا ہے، کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ جو کہ لوگوں کے جسم قبروں کے اندر خراب نہیں ہوتے، وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پابندی سے جمعے کے دن غسل جمعہ کرتے ہوں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ ان کے جسم پھر خراب نہیں ہوتے، جسم صحیح و سالم ہوتے۔ ان کی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک دفعہ آیت اللہ کاظم قزوینی کی، کہ 7 سال بعد جب ان کا جسم نکالا گیا تھا और कुम से करबला मुंतकिल जिस्म किया जा रहा था, 7 साल बाद भी बिल्कुल तरोताजा इनका जिस्म बरामद हुआ है, अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है। और ये वाहिद गुस्ले जुमा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा मुस्ताहब काम है कि जिसको तर्क करना मकरूह है, किसी भी मुस्ताहब काम को तर्क करना मकरूह नहीं है सिवाय गुस्ले जुमा के। गुस्ले जुमा को कोई शख्स तर्क करे तो ये मकरूह है। और इमाम छठे इमाम तो यहां तक ही जुमला इरशाद फरमाते हैं, कि जो अमदन जानबूझकर गुस्ले जुमा को तर्क करे उसे चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। और ये असल में पैगंबरी की रिवायत है कि जो 40 रोज तक गुस्ले जुमा अंजाम देता रहेगा उसका जिस्म कब्र में खराब नहीं होगा, और एक जुमे से अगले जुमे तक के तमाम हम गम और बलाएं उसकी दूर हो जाती हैं। यानी अगर ये हर गुस्ले जुमा को हर जुमे को अंजाम देती जाएगी तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक में जितनी भी परेशानियां आए इसके और इसके बच्चे के लिए आने वाली होंगी, वो सारी की सारी हम गम और तमाम बलाएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इस तरह पूरा ज़माना हमल जो 40 हफ्तों वाला इस तरह का होगा, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरेगा पूरा पीरियड ये हमल का, जो है इसके और इसके बच्चे के लिए बेहतरीन करार पाएगा, बेहतरीन। तो ये एक अलिल खसूस इसके अंदर बात है कि जो कि करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज है जो 40 का अदद जिसका पूरा हो जाना चाहिए, वो है दुआए मुजीर। आगा कफ़मी ने अपनी किताब मिसबाह में इस दुआ को लिखा है, इसके अलावा अल बलदुल अमीन भी जो कि उन्हीं की किताब है इसके अंदर भी ये है। और ये उस वक्त दुआ परवरदिगार की तरफ से पैगंबर इस्लाम को तालीम की गई थी जब पैगंबर मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज को अदा कर रहे थे, और बाकायदा उसी वक्त जिब्रील अमीन इस दुआ को लेकर आए थे। ये गुना, ये जो जितने भी हम आम जिंदगी में ये गुना जो हम अंजाम देते हैं, ये सारे के सारे दुआए मुजीर पढ़ते ही माफ हो जाते हैं। और खास जो इसके दिन हैं पढ़ने के, वो 13, 14 और 15 रमजान है। ये अगर कभी इस दौरान आ जाएं तो खास औकात दुआए मुजीर पढ़ने की है, वरना आम दिनों में भी पढ़ी जा सकती है किसी भी वक्त। बीमारियों से शफा मिलती है और कर्ज अगर है तो वो अदा होता है, तमाम हम गम और अंदो जो है वो सारे दूर होते हैं, गुनाह कितने भी हों सब बख्शे जाते हैं। रिवायतों में ख्वाह रेगिस्तान के जर्रों के बराबर भी क्यों ना हो और दरख्त के पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो तो दुआए मुजीर को पढ़ने से बख्शे जाते हैं। तो हामिला के लिए बहुत जरूरी है कि इस दुआ को पढ़े, इससे एक फायदा ये होगा कि इसका और इसका जो बच्चा है ये तौबा की तरफ बहुत ज्यादा रागिब रहेंगे। रूह को जिला बख्शने वाली दुआ कहलाती है दुआए मुजीर। और 40 का जो अदद है वो है कि रोजाना 40 मरतबा सोने से पहले 40 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना। वैसे तो हर नमाज के बाद 30 मरतबा पढ़ने की नूरानियत है कल्ब के लिए बड़ी ताकीद आई, यानी कोई चाहे कि उसका कल्ब नूरानी हो जाए तो रोजाना नमाजों के बाद 30 मरतबा जो तस्बीहात अरबा इसको पढ़े। और नमाजों के बाद छठे इमाम हमारे जुमला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद, कि नमाज के बाद जो भी 30 मरतबा इसको पढ़ेगा तो उसके बदन पर मौजूद हर गुनाह का असर साकित हो जाएगा, तमाम गुनाह साकित हो जाएंगे जिस्म के हर हिस्से पर अगर 30 मरतबा भी इसने इसको पढ़ा। और हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तो एक और फरमाया, कि अगर हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ा तो इसके पढ़ने का फायदा यह होगा कि वो शख्स जो इसको पढ़ रहा है 10 मरतबा नमाजों के बाद अल्लाह का सच्चा और पक्का दोस्त बन जाएगा, और 1000 बलाएं इसकी दूर होंगी जिसमें से सबसे कम यह है कि इस दुनिया में मुर्तद होने से बच जाएगा, और आखिरत में 1000 दर्जात इसके लिए जखीरा किए जाएंगे जिसमें से एक सिर्फ एक ये है कि उसको पैगंबर इस्लाम का पड़ोस और हमसायगी जन्नत में नसीब होगी। और सबसे अफजल यही कि नमाजों में तीसरी और चौथी रकत में आप तस्बीहात अरबा 3 मरतबा पढ़ती हैं हर नमाजों के बाद, देखिए 30 मरतबा पढ़ने की इसको ताकीद है। और हजरत अमीर तो ये जुमला भी इरशाद फरमाते हैं, रोजाना अगर कोई शख्स 360 दफा इसका अदद मुकम्मल कर ले तो रोजाना के तहफ्फुज की जमानत और बीमा उसका हो जाता है। 360 दफा का तस्बीहात अरबा, यानी समझे 3 तस्बियां और 60 दफा और। तो इस जो हामिला अगर पढ़ेगी तो हामिला और उसका बच्चा हर मुसीबत और बला से महफूज हो जाएंगे, और खुद जो नमाज जाफर तैयार है उसी के अंदर भी ये 300 मरतबा तस्बीहात अरबा ही पढ़ी जाती है। तो इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, और नमाज वाजिब के अंदर भी आपने देखा कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। बल्कि ये उन मसाइल में से एक है कि अगर कोई शख्स गलती से तस्बीहात अरबा पढ़ना भूल जाए तो एहतियात मुस्तहब यह है कि 2 सजदे सहव अंजाम दे। बाकायद आगा सिस्तानी ने तौसील मसाइल में भी लिखा है इसको, क्योंकि इसके अंदर देखिए खुदा की तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तहलील भी है, तकबीर भी है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो तस्बीहात अरबा इसको 30 मरतबा रोजाना नमाजों के बाद आपने मुख्तलिफ अदद सुने, 10 मरतबा का भी फायदा है, 30 दफा का भी फायदा है, 360 दफा का भी फायदा है, जितना भी जिसके लिए मुमकिन हो इसको अगर अंजाम दे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये दौरान हमल जितने भी इस तरह के अमाल जो थे अंजाम दिए जाएं जो कि आज हमने बयान किए, तो बहुत ही ज्यादा उसके बच्चे पर बेहतरीन असरात होंगे। और इस पूरे पीरियड को इन अमाल को करते हुए इस हामिला को चाहिए कि इस अंदाज से इस पूरे पीरियड को ये गुजारे, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी अगली गुफ्तगू होगी तो डिलीवरी के वक्त और उससे पहले और उसके बाद जो खास तौर पर कुछ ऐसे अमाल हैं जो तरबियत औलाद के सिलसिले में काफी बेहतरीन अमाल समझे जाते हैं, इंशाल्लाह अगली दफा हम अगले लेक्चर में इसका जिक्र करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन।
صاحب الزمان.